नंदिनी कुछ भ्रमित हो गई थी। तभी इप्सिता ने उसकी भ्रांति दूर करते हुए कहा, अरे आप इतनी भ्रमित क्यों हो रही हैं? हमारी बात ध्यान से सुने। वास्तव में हम अभिमन्यु के साथ आए हैं और उनकी माँ ने हमें साथ रहने के लिए कहा है, इसलिए हम उनके विला में उनके साथ हैं। नंदिनी ने ये बात सुनते ही आश्चर्य से कहा, क्या तुम जीजू के साथ हो? यार मैंने तो सुना था कि शादी से पहले लड़का लड़की एक साथ नहीं रहते, लेकिन तेरे ससुराल वाले तो बड़े ही आधुनिक सोच के लग रहे हैं, एक साथ रहने की अनुमति दे दी। इप्सिता ने नंदिनी को फटकारते हुए कहा, चुप रह नंदिनी, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। वास्तव में हम और अभिमन्यु अलग अलग कमरों में हैं, बस हमें उनके साथ रहना है, इतना ही कहा गया था। एक ही कमरे में नहीं रह रहे हैं, तुम हर चीज को गलत तरीके से क्यों सोचने लगती हो? इप्सिता की डांटने पर नंदिनी हंसते हुए बोली, अच्छा अच्छा, मुझे तो कुछ और ही लग रहा था। खैर तो फिर ये बताओ, तुम मुझसे मिलने आओगी या नहीं? इप्सिता ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल आएंगी, एग्जाम देने तो हमें आना ही है, फिर भी हम उससे पहले एक बार हॉस्टल भी आएंगी तुमसे मिलने, क्योंकि हमें अपना आईडी कार्ड और एडमिट कार्ड भी लेना है। वैसे तुम भूली तो नहीं हो ना, तुमने हमारा एडमिट कार्ड ऑफिस से कलेक्ट कर लिया था ना? नंदिनी ने उत्तर दिया, हाँ, तुम्हारे भाई का फोन आया था ना, तो मैंने दोनों चीज़ें कलेक्ट कर ली हैं और बहुत संभाल कर रखा हुआ है। ठीक है, तो फिर मुझे ये बताओ कि हम कब मिल रहे हैं? नंदिनी की बात सुनकर इप्सिता ने थोड़ा सोचते हुए कहा, आज तो मिलना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि हम अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर आए हैं, लेकिन हाँ, हम कल तुमसे मिलने ज़रूर आएंगी, क्योंकि आज हमें थोड़ी थकान भी हो रही है, तो हम थोड़ी देर आराम करने जा रहे हैं। नंदिनी ने भी उसकी बात मानते हुए कहा, ठीक है, तुम आराम से रेस्ट कर लो, वास्तव में मैं भी थोड़ा पढ़ रही थी, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। नंदिनी ने इतना बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और इप्सिता ने भी अपना फ़ोन वहीं साइड में रखकर आराम से लेट गई। उसे काफ़ी थकान हो रही थी तो वो थोड़ी देर के लिए सो गई। दोपहर में काफ़ी देर तक इप्सिता सोती रही। शांता उसके कमरे में ही उसे खाना देने आई। इप्सिता को जैसे ही किसी के आने की आहट हुई, उसकी नींद टूट गई और वो उठकर बैठ गई। उसने देखा कि सामने शांता खड़ी थी। शांता ने खाने की ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा, बहुरानी सा, ये आपका खाना है, हमने सारा खाना कुंवरसा की पसंद का बनाया है, क्योंकि हमें पता नहीं था कि आप क्या खाती हैं और क्या नहीं। अगर आपको इनमें से कुछ नहीं खाना है तो बता दीजिएगा, हम दूसरा खाना बना देंगे, और रात के खाने में आपको क्या खाना है वो भी बता दीजिएगा। इप्सिता ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हमारे लिए आपको कुछ भी अतिरिक्त करने की ज़रूरत नहीं है काकी, आप जो भी बनाएंगी हम खा लेंगे। शांता थोड़ी सी हैरान हो गई और उसने अपने मन में कहा, इतने बड़े परिवार की बेटी होने के बावजूद भी बहुरानीसा के कोई नखरे नहीं है, ये बात तो हमें हजम नहीं हो रही। हो सकता है शायद वो अभी सहज नहीं है, इसीलिए शायद वो कुछ बोल नहीं रही है। इप्सिता शांता को इस तरह सोचते देखकर बोली, आपको कुछ कहना है क्या हमसे? शांता ने सिर हिलाया और चुपचाप उसके कमरे से बाहर चली गई। इप्सिता ने खाने की ट्रे की तरफ देखा और उसकी नज़र घड़ी पर गई। उसने देखा दोपहर के 2 बज रहे थे। इप्सिता ने समय देखते हुए कहा, हमने तो सोचा था हम थोड़ी देर के लिए झपकी लेंगे, लेकिन हमारी तो आंखें काफ़ी देर तक लगी रहीं, हम इतनी देर तक सोते रहे। खैर कोई बात नहीं, वैसे भूख तो लगी है, एक काम करते हैं, फ्रेश होकर पहले खाना खा लेते हैं। वहीं अभिमन्यु जिस प्रोजेक्ट के लिए वहां आया था वो उसी को लेकर काफ़ी व्यस्त था, लेकिन फिर भी उसने ही इप्सिता के कमरे में खाना भेजने के लिए शांता को कहा था। इप्सिता फ्रेश होकर आई और खाना खाने के लिए बैठ गई। उसने खाने की एक निवाला लेते ही कहा, वाह, खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट बना है, बिल्कुल घर जैसा खाना लग रहा है। इप्सिता जल्दी जल्दी खाना अपने प्लेट में निकालकर खाने लगी। खाना खाते वक्त उसे अभिमन्यु का ध्यान आया और उसने अपने मन में कहा, पता नहीं मिस्टर अभिमन्यु ने खाना खाया होगा या नहीं, क्या करूं, उन्हें फ़ोन करके पूछूं क्या? इप्सिता ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम क्यों पूछें, और वैसे भी उन्होंने भी खा ही लिया होगा अब तक, ऐसा तो नहीं है कि उनके घर वाले हैं और उनके ही नौकर हैं, तो क्या उन्हें ही खाना देने नहीं जाएंगे? इप्सिता इतना सोचकर दोबारा खाना खाने लगी। इप्सिता ने किसी तरह खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं माना, तो उसने अपने आप से कहा, मुझे लगता है हमें उनसे एक बार पूछ लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारी इतनी मदद की है, और अगर हम उनके बारे में थोड़ी सी चिंता दिखा देंगे तो शायद उन्हें भी अच्छा लगे और वो हमें स्वार्थी न समझें। इप्सिता को कहीं ना कहीं अभिमन्यु की थोड़ी चिंता हो रही थी, इसीलिए उसने अपना खाना रोका और अपना मोबाइल फ़ोन उठाकर अभिमन्यु को कॉल कर दिया। अभिमन्यु इप्सिता का नंबर देखकर कॉल रिसीव करते हुए बोला, हाँ इप्सिता, क्या बात है, आपको कुछ चाहिए था क्या? इप्सिता ने कहा, नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, वो एक्चुअली हमने आपसे कुछ पूछने के लिए कॉल किया है। अभिमन्यु ने कहा, हाँ बोलिए, क्या पूछना है आपको? इप्सिता ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, वो एक्चुअली हमें पूछना था कि आपने लंच कर लिया? अभिमन्यु ने कहा, हाँ, शांता काकी ने हमें हमारे कमरे में ही लंच दे दिया था, तो हमने ही उनसे कहा था कि वो आपको भी लंच ले जाकर आपके कमरे में ही दें, आप लंच कर लीजिए, क्योंकि जब हमने लंच किया था तो आप सो रही थी, इसलिए हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया और आपका खाना आपके कमरे में भेज दिया, अब आप आराम से लंच कर लीजिए, हम शाम तक डिनर से पहले विला पहुँच जाएंगे। इप्सिता ने ये बात सुनते ही हैरानी से पूछा, मतलब आप विला में नहीं है? अभिमन्यु ने उत्तर दिया, नहीं, एक्चुअली हम अपने जिस प्रोजेक्ट के लिए आए हैं उसका काम कैसा चल रहा है ये चेक करने के लिए हम साइट पर आ गए थे, पहले हमने सोचा कि हम आपको बता दें, लेकिन आप सो रही थी, इसीलिए हमने आपको नींद से जगाना ठीक नहीं समझा। इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर अपने मन में बोली, अभिमन्यु जिम्मेदार और परिपक्व होने के साथ साथ बहुत मेहनती भी है। अपने मन में ये सब कुछ सोचते हुए इप्सिता चुप हो गई। थोड़ी देर तक इप्सिता ने कुछ नहीं बोला तो अभिमन्यु ने पूछा, आपको और कुछ कहना है? एक्चुअली हम अभी कुछ जरूरी काम कर रहे थे, अगर आपको कुछ पूछना नहीं है तो हम फोन रखें। इप्सिता ने कहा, क्षमा करें, हमने आपको परेशान कर दिया। अभिमन्यु ने कहा, नहीं आपको क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए, आप आराम से लंच कर लीजिए। इप्सिता ने हामी भरी और अभिमन्यु ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर वो खाना खाने में व्यस्त हो गई। वहीं दूसरी ओर अभिमन्यु जो अपने केबिन में बैठा था वो अपने मोबाइल फोन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उसने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, क्या हम भी मूर्खों की तरह मुस्कुरा रहे हैं, बल्कि हमें तो अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। इतना बोलकर अभिमन्यु ने फोन वहीं साइड टेबल पर रख दिया और अपने काम में व्यस्त हो गया। अपना काम पूरा करते करते कब 6 बज गए उसे पता ही नहीं चला। अभिमन्यु ने अपना काम जल्दी से पूरा किया और सीधे विला की ओर चल पड़ा। रास्ते में काफी ट्रैफिक था जिस वजह से अभिमन्यु जब घर पहुंचा तो डिनर का समय हो गया था और इप्सिता वहीं हॉल में बैठी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभिमन्यु के ही आने का इंतजार कर रही हो। जैसे ही अभिमन्यु वहां आया उसने इप्सिता की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है इप्सिता, आप यहाँ हॉल में क्यों बैठी हैं? इप्सिता ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वो एक्चुअली हम अपने कमरे में बोर हो रहे थे इसीलिए हम यहाँ आ गए। क्यों, हम यहाँ नहीं आ सकते क्या? अभिमन्यु ने तुरंत उत्तर दिया, अरे नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम तो बस यूं ही पूछ रहे थे, आपने डिनर कर लिया? इप्सिता ने सिर हिलाया।
अभिमन्यु ने कहा, ठीक है हम फ्रेश होकर आते हैं फिर हम साथ में डिनर करेंगे। इप्सिता ने धीरे से हामी भरी और अभिमन्यु सीधे अपने बेडरूम में कपड़े बदलने के लिए चला गया। थोड़ी ही देर बाद वो एक साधारण टी शर्ट और जीन्स पहनकर आया। इसे देखकर इप्सिता अभिमन्यु को देखती ही रह गई। अभिमन्यु ने हाफ स्लीव टी शर्ट पहनी हुई थी जिससे उसके बाइसेप्स साफ नजर आ रहे थे। ऐसे तो अभिमन्यु हमेशा सूट और फॉर्मल ड्रेस में ही रहता था। अभिमन्यु का ये रूप इप्सिता ने पहली बार देखा था। उसे बस अभी पता चला था कि अभिमन्यु की बॉडी काफी अच्छी है। उसके बाइसेप्स देखकर इप्सिता का मुंह खुला रह गया और वो धीरे से अपने मन में बोली, मिस्टर अभिमन्यु तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम है, हमें नहीं पता था कि कोट और पैंट के नीचे इस तरह का एक बॉडी बिल्डर होगा। अभिमन्यु चुपचाप डाइनिंग टेबल के पास आया और कुर्सी पर बैठते हुए बोला, इप्सिता आइए। इप्सिता अभिमन्यु की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आवाज सुनकर ही इप्सिता को जैसे होश आया हो और वो सीधे उसके बगल वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उन दोनों के बैठते ही शांता और उनके साथ दो तीन और घर के नौकर टेबल पर उन दोनों के लिए खाना परोसने लगे। क्रमशः